सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आप सभी आज उपस्थित हुए हैं मानव एकता दिवस के रूप में। जिस दिवस को श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, नतमस्तक होते हैं उन कुर्बानियों की तरफ जो इसी मानवता को ज़िंदा रखने के लिए, मानव जाति को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, ये उद्धार करने के लिए ऐसे ऐसे महान जो योगदान और बलिदान दिए गए, आज सभी उनके प्रति नतमस्तक हैं, जिसके कारण आज हम ये बसता हुआ ये घर देख रहे हैं, जो ये विशाल रूप धारण किया है वो उन्हीं कुर्बानियों के कारण है। जो देन दी गई है, केवल मिशन को वो देन नहीं, एक संसार को देन है। जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने ताउम्र पूरी तरह से अपना एक एक पल समर्पित किया था मानवता को, और एक ही धुन कि कोई भी इंसान इस अंधकार में न रह जाए, इंसान सच्चे धर्म की पहचान करे। मानव के रूप में पैदा हुआ है तो मानवीय गुणों से युक्त होके इस जीवन के सफ़र को तय करे, यही हमेशा उनको धुन, यही लगन कि जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है, जो गुरु ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, मैं इस ज़िम्मेदारी को पूरे तप त्याग के साथ इसको निभाऊं। और वाकई ही उन्होंने एक शिष्य के रूप में भी बाबा अवतार सिंह जी के वचनों का कदम कदम के ऊपर पालन किया, और उस वक़्त से ही उनको यही ध्यान में रहता कि समय के साथ साथ हम और मिशन में इसमें इजाफा लाने के लिए कुछ साधन जुटाएं। और इस प्रकार से जब ये ज़िम्मेदारी मिली, उसके बाद फिर कभी भी पलट कर नहीं देखा। हालांकि हालातों ने इस प्रकार से अपने कदम उठाए और यही सोचा कि शायद ये मुख मुड़ जाएगा, लेकिन वो कभी भी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं थे। और हमेशा ही उन्होंने, जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि took everything head on, इस प्रकार से कोई भी चैलेंजेस, कोई भी स्थितियां सामने आई, उनको उसी तरह से उन्होंने सामने होकर उसका एक हल ढूंढे। किस प्रकार से मिशन को विस्तार देने के लिए कितने कितने फैसले लिए, मसूरी कॉन्फ्रेंसेस दो की, लुधियाना में प्रचारक कॉन्फ्रेंस की, और इतने इतने अहम फैसले लिए जो आज तक मिशन का की प्रगति या जो मिशन आगे चल रहा है वो आधार बने। अभी भी थोड़ी देर पहले सरोवर प्रांगण का जिक्र हुआ कि यहाँ ये सारी ही कलर ज़मीन है, ये यमुना बेल्ट खार वाली ज़मीन है, और हर साल यहाँ फ्लड्स आया करते थे। और किस प्रकार से ऐसी बंजर ज़मीन में उन्होंने यहाँ पर हरियाली लाई, अनाज पैदा किया, अनेकों फल फूल पौधे पैदा किए। तो दास यही सोच रहा था कि उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की और कल्लर ज़मीन को भी हरियाली में तब्दील किया। तो जो आधार की दास बात कर रहा है, तो दास सोचता है कि अगर आज सरोवर का इतना सुंदर रूप सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो दास के ध्यान में यही आता है कि अगर दास को वो कलर वाली ज़मीन सौंपी गई होती तो एक ज़रा सा भी टुकड़ा हरा ना कर पाता। ये उन्होंने ही मेहनत की जिसके कारण एक ऐसी नींव पड़ी, एक ज़मीन तैयार हुई कि उस ज़मीन के ऊपर फिर कुछ भी किया जा सके। इसी प्रकार से उन्होंने जो जो भी फैसले लिए, एक मिशन के प्रबंध की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से देखें, सामाजिक कितनी कुरीतियाँ, या फिर समाज के उत्थान के लिए, या फिर जो खाम खा के बोझ गृहस्थियों के ऊपर बने हुए थे, विशेषकर शादी विवाह जैसे ऐसे अवसर, उन्होंने पूरा ऐसी तरह से जतन किया कि इस प्रकार से याद है दास को कि जब एमरजेंसी लगी देश में, तो उस वक्त ठीक है कई ऐसे विपरीत पहलू थे जिसके कारण वो आज तक इस प्रकार से उसके जिक्र हो रहे हैं, लेकिन उसमें से एक उस वक़्त कुछ थोड़ा सा लागू किया गया, कुछ ऐसे चीज़ें उनमें से एक विवाह शादी के संबंध में था कि बारात इतनी अधिक नहीं, ज़्यादा बड़ी बारात ना हो शादी विवाह के अवसर के ऊपर। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने उस वक़्त यही कहा कि ये बात है, ये तो मुझे बहुत पसंद है कि इस प्रकार से ये जो शादी विवाह के ऊपर इतने इतने एक खर्च किए जाते हैं, फजूल खर्च किए जाते हैं, तो चलो आराम से नहीं कोई मान रहा तो चलो थोड़ा भय से ही मानने शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना इसको सहज भाव में अपना लिया जाए। तो इस प्रकार से उनके मन में यही चाहना रहती थी कि ये मेहनत मशक्क़त की जाती है या कमाइयाँ होती हैं, अगर मालिक ने बहुत बख्शा है ये साधन तो इसको क्यों ना परोपकार में लगाएं, बजाय इसको फजूल खर्च में लगाएं। इस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए अगर नशे इत्यादि की बात करते हैं, तो तब भी उन नशों से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जो ये ऐलान किया, ताकि इसमें कितने कितने नुकसान हो रहे थे। एक तो हम अपने जीवन की चाल ही, जैसे अंदर वो नशा जाता है तो बहकी हुई चाल बन जाती है, तो एक तो हमारी चाल भी बहकी हुई हो गई, और फिर जब नशा अंदर आता है तो बाहर वो कुछ निकालता है हमारे अंदर से, वो भी हमारे लिए पीड़ा का कारण, सारे परिवार के लिए पीड़ा का कारण, और मिशन को भी बहुत बड़ी हानि उस रूप में हो रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये खुला ऐलान किया कि इससे हमने गुरेज करना है, और गुरेज ही नहीं बल्कि इसको बिल्कुल ही अपने जहन से निकाल देना है, ताकि जो गृहस्थियों के, जो परिवारों के पालन पोषण होते हैं, तो उसमें एक कमाइयाँ जो इतनी मुश्किल से होती हैं, वो भी इस तरह से अगर नशे में नालियों की तरह उसको बहा दिया जाए नशे में, तो वो भी हमारे लिए एक साधन फजूल चला जाता है, फिर कोई बरकत नहीं रहती है। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों रूपों में बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये योगदान दिए, और ये प्रचार की दृष्टि से जब बात करते हैं तो इसी एक रफ्तार में वो चलते चले गए, ना गांव ना कस्बा ना खेड़ा कुछ भी नहीं देखा, और किस प्रकार से सुबह शाम दिन रात साधन कम होने के बावजूद अभी तो कितने कितने दातार की कृपा से साधन ये प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उस वक़्त एक ही उनकी अकेली गाड़ी, और उसी एक अकेली गाड़ी में अगर रास्ते में खराब भी हो गई है तो किस प्रकार से कितनी कठिनाइयों से होते हुए फिर वहाँ पहुँच जाना या सत्संग होना है। इस प्रकार से उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। एक बार याद है जब जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर जा रहे थे तो गाड़ियाँ, एक बाबा गुरबचन सिंह जी की गाड़ी जिसमें राजमाता जी भी और भी एक दो महापुरुष हरिमोहन शर्मा जी इत्यादि, और एक गाड़ी जिसमें हम सारे बच्चे, तो हम आगे आगे चलते चले गए, कुछ एहसास नहीं रहा, पीछे देखा नहीं मुड़ के, और बहुत दूर निकल गए और आगे पहाड़ी सारा इलाका। और जब आगे पहुँचे काफ़ी देर के बाद जहाँ रुके तो सोचा कि पीछे गाड़ी तो है नहीं, तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इतना ही समय बीत गया तो गाड़ी आई नहीं। और शाम होने को है, अभी बिल्कुल ही रात्रि का वक्त होने को है, तो देखा कि आर्मी का ट्रक आ रहा है, और आर्मी के ट्रक के डाले के ऊपर बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी, उसके ऊपर सवार और वहाँ पर उतरे। फिर वहीं पर जहाँ हम रुके थे वहाँ पर आर्मी के कंटोनमेंट एरिया था, बैरक्स थी, तो उसी बैरक्स में रात बिताई, और अगले दिन फिर गाड़ी ठीक होकर आई और श्रीनगर की तरफ गए। तो दास ये मिसाल दे रहा था कि ज़रा सा भी संकोच नहीं कि मैं ऐसी गाड़ी में बैठूं या नहीं बैठूं, मैं उस कार में बैठूं ना, ये इस प्रकार से आराम वाला साधन तो है नहीं। लगातार उनकी यही कोशिश रही, और मिशन का एक एक पैसा बचे, ये खून पसीने की कमाई। तो इतना समय वर्कशॉप में वो बिताते थे, किस लिए? ताकि कम से कम खर्च हो, और इसमें जितनी सेविंग हो ताकि ज़्यादा सत्संग भवन बने, ताकि ज़्यादा समागम हो, ताकि ज़्यादा प्रचार हो। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी ऐसी मिसालें ये पेश की हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और तमाम उम्र उन्होंने इसी प्रकार से ये मानवता को यही एक एहसास कराने के लिए कि ये धर्म ग्रंथ जो गुरु पीर पैगंबरों की वाणी है, ये हमें क्या कहती है। लेकिन हम केवल उन क्रियाओं तक रह जाते हैं जो धर्म ग्रंथों में प्रभु परमात्मा की चर्चा है, इसको जानते नहीं हैं, इसका बोध हासिल नहीं करते हैं, और केवल पठन पाठन तक अपने आप को सीमित कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये संसार को भी ये संदेश दिया कि अगर गुरु पीर पैगंबरों ने कहा कि आत्मा का कल्याण परमात्मा को जाने बगैर संभव नहीं है, तो फिर हम इसको जाने बगैर ये यात्रा संपन्न करते जा रहे हैं, तो फिर आत्मा का उद्धार कहाँ होने वाला है, इसको टिकाना कहाँ मिलने वाला है, इसको मंजिल मकसूद कहाँ मिलने वाली है। इसलिए उन्होंने ये भी एक जो संसार को ये जागृति देने के लिए आप भी चलते चले गए, और अनेकों महापुरुषों को जिम्मेदारियां सौंपी, वो भी इस प्रकार से चलते चले गए, वो भी इस संदेश को देते चले गए। और हमने फिर वो देखा कि ऐसे हालात बने, और हालात ऐसे कि चारों तरफ एक जहर ही जहर, और चारों तरफ इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार से मिशन का साथ देने वाला नहीं, और पूरे तरह से एक विपरीत प्रचार मिशन के लिए किया जाता रहा, और कितने जुल्म और तशद्दुद होना शुरू हो गए। और इस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी अपनी महान आहुति दी। चाचा प्रताप सिंह जी साथ थे, और आज वीरवार है, उस दिन भी वीरवार का ही दिन था, 1980 का 24 अप्रैल का, और पहाड़गंज में सत्संग वीरवार की उन दिनों में हुआ करती थी, और वहीं पहाड़गंज में सत्संग का समापन हुआ, तो अंदर जो स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में ही भोजन की व्यवस्था की गई, तो दास भी साथ में और अचानक ही बाबा गुरुबचन सिंह जी सीट से उठे कि बस जाना है, ज़रूरी काम है, तो दास भी उठा और भी साथ में उठे तो एकदम से कहने लगे, नहीं आप बैठो, आप खाना खा के बाद में आना। तो हमें वहीं बिठा दिया और वो गाड़ी निकल पड़ी। और जब हम भवन में पहुंचे, कॉलोनी में, तो बाहर सड़क पे देखा इतना रश, तो पता चला कि ऐसी घटना घट चुकी है। तो इस प्रकार से उन्होंने आखिरी श्वासों तक ना सत्संग छोड़ा, ना प्रचार छोड़ा, ना इस प्रकार से कितने कितने भयानक समय आए उससे कभी भी रुके नहीं। और ऐसी एक सादगी स्वभाव में, एक ऐसे सादेपन के साथ उन्होंने जीवन की यात्रा को तय किया। 1979 में गर्मियों के दिन मसूरी में, उस वक़्त करनाल में केस चल रहा था, तो जो हमारी मिशन की तरफ से डिफेंस जो लॉयर्स थे वो वहाँ पर आए हुए थे मसूरी में, और विचार विमर्श हो रहा था कि हमारी डिफेंस लाइन कैसे मजबूत की जाए, कितने कितने 60 महापुरुषों के ऊपर इतने ये सेक्शंस लगाए हुए हैं, और एक बिन आधार के ऊपर किस तरह से इतनी देर से महापुरुष अंदर हैं, कितनी परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से वो भी वहाँ थे, तो बाबा गुरुबचन सिंह जी कमरे से निकले बाहर कैमलबैक रोड पे सैर करने के लिए, तो वो वकील साहबान भी साथ। और जो ही निकले तो वो गैलरी जो है आप जानते हैं, जहाँ पर पुराना हॉल हुआ करता था, जहाँ पुल बना हुआ है, वो पुल के आगे क्रॉस करो तो जो गैलरी है वो बहुत तंग सी है, शायद 2.5 फुट भी चौड़ी नहीं होगी। तो जब वहाँ से चल रहे थे तो आगे बहनें खड़ी हुई सेवा दल की, वो कुछ सफाई कर रही थी, कुछ वैसे खड़ी। तो जो ही वहाँ तक पहुँचे तो बाबा गुरुबचन सिंह जी एकदम से कहने लगे मोटियाँ मोटियाँ अगे खड़ियाँ हो गया, असी किवें लंघा गया इतों। तो वकील साहब भी साथ में वो थे, वो हंसने लगे। लेकिन उन्होंने वापस जाकर करनाल में अपनी जितने लॉयर्स टीम या और भी कोई ऑफिसर्स थे उनको जाकर यही कहा कि जो मैंने देखी है सादगी, कि कोई भी छल नहीं, पूरी निर्छलता, इतनी सादगी, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये कोई कातिल होंगे, ये इस प्रकार से, ये तो इतना भोलापन है इनमें। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार की एक सादगी के साथ उन्होंने इस जीवन के सफ़र को तय किया, और औरों को भी बनावटों से ऊपर उठकर एक अंतर बाहर से एक होकर जीवन जीने की उन्होंने प्रेरणा दी। और उनका भी यही ध्यान था, दास को याद है मसूरी कॉन्फ्रेंस, हालांकि 1965 वाली कॉन्फ्रेंस में भी दास मौजूद था, लेकिन 73 में तो दास को, चड्ढा साहब को हमको भेजा, एक वैन हुआ करती थी वॉक्सवैगन की, तो उसमें जितने भी कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेशनरी इत्यादि काम आने थे, डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होने थे, तो दास की ही ड्यूटी लगी उस गाड़ी को चला के ले जाने के लिए। तो वहाँ पर भी तमाम उस कॉन्फ्रेंस के दौरान दास वहाँ मौजूद था। तो वहाँ पर भी यही जिक्र हुआ कि क्यों ना मिशन की तरफ से कुछ ब्लड डोनेशन के आयोजन किए जाएं। और इस प्रकार से बाबा गुरुबचन सिंह जी का ध्यान था कि ऐसे देन मिशन के द्वारा दी जाए, लेकिन फिर ऐसा उस वक़्त संभव ना हो पाया। तो फिर 86 से ये ब्लड डोनेशन कैंप्स का आरंभ हुआ, और तब से ले कर आज तक इस रूप में भी योगदान दिए जा रहे हैं। जैसे आज भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, जिसमें अनेकों अनेकों महापुरुष अपना ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और बरसों से देते चले आ रहे हैं। और आज सुबह ही दास ने उस कैंप में जिक्र किया कि हिंदुस्तान भर में भी स्थान स्थान के ऊपर ऐसे आयोजन हो रहे हैं, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं अन्य मुल्कों में भी ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन, और दास ने जिक्र किया कि अभी चंद रोज़ पहले ही मिडल ईस्ट के बहरीन में वहाँ पर भी मिशन के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, और अगर बात करें चंद रोज़ पहले की तो टोरंटो कनाडा में भी एक विशाल ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, अगर बात करें बर्मिंगम की वो भी चंद रोज़ पहले वहाँ पर बहुत विशाल एक आयोजन ऐसा हुआ जहाँ पर स्थानीय कितने कितने संस्थाएं और लोग आए। इसी प्रकार से ये जगह जगह के ऊपर ऐसे योगदान ये दिए चले जा रहे हैं, हर प्रांत में हिंदुस्तान के ऐसे योगदान दिए चले जा रहे हैं, और या फिर अचानक कोई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं तब भी स्पेशली ऐसे आयोजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी बाबा गुरबचन सिंह जी का ही ध्यान था कि मिशन के द्वारा इस रूप में भी एक योगदान ये दिए ये जा सकें, और उस प्रकार से ये साध संगत ने पूर्ण सहयोग दिया जिसके कारण ये ऐसे महान योगदान ये समाज के लिए दिए जा रहे हैं, इस प्रकार से अपने आप को पेश करते चले जा रहे हैं। इस तरह से चाहे मजबूरियां भी शारीरिक होती हैं फिर भी अपने आप को प्रस्तुत करते आ रहे हैं, और वाकई ही जो ऐसे कैंप्स में डॉक्टर्स इत्यादि उनकी टीम्स आती हैं वो कहीं पर भी आयोजन हो वो यही असर लेके जाते हैं कि हमें इतने इतने बरस हो गए हैं, आज भी यहाँ पर रेड क्रॉस से जो स्टाफ अंदर जो डॉक्टर्स की टीम थी वो मिले कहने लगे हमें 25 साल हो गए हैं इस कैंप में आते हुए, और कहने लगे कि 25 ही साल अगर यहाँ आते हुए हुए हैं तो ये तो है नहीं कि हम केवल मिशन के ब्लड डोनेशन कैंप्स में आते हैं, अन्य और भी ऐसे आयोजन होते हैं, लेकिन जो डेडिकेशन यहाँ देखी हमने कहीं पर भी नहीं देखी है, और ये हर जगह पर यही असर है। कहीं पर भी चले जाएं, किसी प्रांत में चले जाएं, वहाँ के उस वक्त किसी डीसी को बुलाया जाए, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया जाए, किसी कोई और वहाँ पर निमंत्रित हो, हर किसी का यही बयान है कि ऐसी डेडिकेशन बेमिसाल जो मिशन में है ये हमने कहीं पर भी नहीं देखी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार से महापुरुष संत जन ये देन देते चले जा रहे हैं, ये अपने आप को प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं कि किसी की जान बच जाए। ऐसी देन देने के लिए एक स्लोगन कहीं पर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 5 मिनट्स ऑफ योर्स प्लस 350 ml सेव्स ए लाइफ, कि इस प्रकार से केवल 5 मिनट की बात और 350 ml खून जान बचा सकता है। तो इस प्रकार से ये जहाँ पर इस रूप में जीवन दान देने के प्रयास करते आ रहे हैं भक्तजन, वहाँ पर 84 लाख से उभारने के लिए कितने योगदान देते आ रहे हैं, इस प्रकार से इस ज्ञान की रोशनी से युक्त करते चले जा रहे हैं। यहाँ तो शरीर के बचाव के लिए भी योगदान दे रहे हैं और वहाँ पर आत्मा के बचाव के लिए भी कितने योगदान देते चले जा रहे हैं, और इस मानसिकता इस मन के लिए भी, क्योंकि मन ही तो खेल खेलता है, मन ही तो हमें गिरावट की ओर ले जाता है, मन ही तो रावण बन जाता है, तो इसलिए मन का भी बचाव होना बहुत ज़रूरी है, और मन का बचाव इसी में है कि मन के भावों को सुंदरता मिलती चली जाए, इस मन में मानवीय मूल्यों का एहसास होता चला जाए, इस मन की संकीर्णता दूर होती चली जाए, मन की सहनशीलता बढ़ती चली जाए, मन में प्रेम करुणा का भाव पैदा होता चला जाए, और इस प्रकार से एक मन की भी दुरुस्ता होती चली जाए, और इस प्रकार से एक जीवन की चाल का भी उस रूप में बचाव हो जाए। जब मन का बचाव हो गया, जब मन को वो सही दिशा मिल गई, मन के भाव सुंदर बन गए, तो फिर मन ने हाथों से भी नेक काम करवाए, मन सुंदर हुआ तो दृष्टि भी साफ हो गई, एक मन इस प्रकार से सुंदर हो गया तो एक धन का भी सदुपयोग हो गया, ताकत का भी सदुपयोग हो गया, फिर चाहे हुकूमत करने को मिले, फिर शोषण नहीं किए करेंगे। इस प्रकार से ये हर पहलू को जीवन के एक सुंदर बनाने के लिए ये संत महात्मा भक्तजन परोपकारी ये लगातार ऐसे योगदान ये देते चले आ रहे हैं और इससे कभी कदम रोकते नहीं हैं और हमारे लिए प्रेरणाएं हैं बाबा गुरबचन सिंह जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी और अनेकों अनेकों महापुरुष। और उन बाबा गुरबचन सिंह जी के बाद भी जो दौर चला उसमें कितने कितने महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, जिन्होंने ये महान कुर्बानियाँ दी और उनके परिवारों के सिदक, उन महापुरुषों के विश्वास, उन महापुरुषों के उन हालातों में भी अपने कदमों को चलाए रखना, वो भी हमारे लिए प्रेरणा के कारण बने, एक शक्ति का कारण बने, एक ताकत का कारण बने, जिसके कारण मिशन अपनी उस पटड़ी से हटा नहीं और उसी दिशा की तरफ ये चलता चला गया, अपनी लकीर को आगे बढ़ाता चला गया, दूसरे को की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर बड़ी करने वाले तो उन्होंने तो यही सोचा था और युगों युगों से यही करते आए हैं और वही जालिम बनते आए हैं। और इस प्रकार से समाज में भी हम देखते हैं यही दौड़ लगी हुई है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इसकी लकीर मिटा दूं, इसको मैं कहीं का ना छोड़ूं, बस अस्तित्व तो मेरा ही बाकी रह जाए। तो दूसरों की लकीरों को मिटाकर अपने वजूद को बनाए रखने के लिए या उसको और बढ़ाने के लिए, तो ये तो पैंतरे तो चलते आ रहे हैं, ये फितरतें तो चलती आ रही हैं, ये तो एक ऐसी अभिशाप कहें कि ये मानसिकता में इंसानों की बहुत गहरी उतरी हुई हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, यही शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने शिक्षा दी थी कि हमने अपनी लकीर को बड़ा करना है और हमारी अपनी लकीर बड़ी होगी अगर उसमें पूरी तरह से डेडिकेशन होगी, डिवोशन होगी, एक तप त्याग होगा, सेक्रीफाइसेस होंगे और ज्ञान की लौ को पूरी तरह से हम अपने उस रोशनी के अंतर्गत जीवन जिएंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी लकीर छोटी रह जाए। हमारे जीवन को भी निखार मिलेगा, सामाजिक रूप में भी हमारे जीवन में निखार आएगा और इस प्रकार से हर पहलू वो बेहतर होता चला जाएगा। इस रूप में उन्होंने योगदान दिए और कहा कि जिस रूप में भी योगदान दिए जा सकते हैं, जैसे वो अंग्रेज़ी में भी एक कहावत है कि आई नो दैट आई कैनॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग, बट आई विल नॉट लेट वॉट आई कैनॉट डू बिकम ए हिंड्रेंस इन वॉट आई कैन डू। कि इस प्रकार से मैं उस बात को बीच में अड़चन नहीं बनने दूंगा कि मैं कर नहीं सकता, ये मैं इसको अड़चन नहीं बने दूंगा कि मैं जो कर सकता हूँ उसके लिए भी मेरे कदम रुक जाएं, जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं करूँ, जिस रूप में भी मैं योगदान दे सकता हूँ। और साथ ही साथ विनम्रता बनाए रखने के लिए फिर ये भाव कि जो अगर मैं कुछ कर भी पाऊँ तो उसके लिए भी शक्ति दातार तेरी है, और अगर कर रहा हूँ वो भी ताकत तेरी है, वो मत भी तेरी है, वो सुमत भी तेरी है, ये सोच भी तूने दी है और ये ताकत भी तूने दी है, तो तेरी कृपा से ही सजे हम हैं, ये तेरी ही कृपा है, ये तेरी ही दया है। तो इस प्रकार से दास जो बात कह रहा था कि किसी बात से अपने कदमों को ये रुकने नहीं देते हैं, वही पंक्ति जो सूफी संतों ने कही है कि रहाते चलाते पिजे कमली और रहाते टूटे नींव, कि अगर चलता हूँ तो कमली भीगती है, रुकता हूँ तो ये प्रीत टूटती है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे भीगना गवारा है लेकिन प्रीत टूटनी गवारी नहीं है। और इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुषों ने विश्वासों के प्रमाण दिए और चाहे कैसे तूफान आंधी लेकिन कदमों को नहीं रुकने दिया। और इस प्रकार से ये बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन को समर्पित हो रहे हैं और उन्होंने जिस जिस बात से हमें रोका हम उस प्रकार से उससे अपने आप को अपने कदमों को रोकें और जिस तरफ बढ़ने के लिए कहा हम उस तरफ बढ़ते चले जाएं। हम अपनी संकीर्णताओं को छोड़ें। दास को ये भी याद है 24 अप्रैल के चंद रोज़ पहले दिल्ली में ही जहां बाबा गुरुबचन सिंह जी का कमरा उसके बाहर बरामदा उसी में ही 10-15 पंजाब से आए हुए थे किसी ब्रांच से महापुरुष, तो कोई वहाँ आपस में उनके मन मटाव और कोई प्रॉब्लम खिंचाव चल रहा था, तो बाबा गुरुबचन सिंह जी ने यही कहा कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी तुम्हें एहसास नहीं कि उधर जाने जा रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, मिशन दाव पे लगा हुआ है और तुम छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने उलझे हुए हो, कोई तुम्हें कोई गुरमत भूल गई है, ज़रा पूरी तरह से मनमत में पड़े हुए हो, ना तुम्हें गुरु का भय न अहंकार का भय, और इस प्रकार से वो उनको समझाए जा रहे थे। तो दास का कहने का भाव कि जो गुरमत होती है वो हमें हमेशा ही एक औरों को सत्कार सम्मान देने वाली वो भाव होती है, वो अवस्था होती है, एक संकीर्णता से ऊपर उठने वाली होती है अवस्था, एक तप त्याग सहनशीलता करने वाली होती है गुरमत। और इस प्रकार से जो वो देन दी जा रही हैं उस वक़्त बाबा गुरुबचन सिंह जी जो कहा उसके बाद देखें अपना आप उन्होंने बलिदान कर दिया, खुद बलिदान कर दिया। जब वो समझाने के लिए चंद ऐसे लोगों को कह रहे थे उसके चंद रोज़ बाद अपना बलिदान दे डाला, और उसके बाद कितने ही बलिदान हुए, कितने ही ऐसी कुर्बानियाँ हुई। तो आज के दौर में हम सोचे विचारें कि हम भी ऐसी संकीर्णता में तो नहीं आ गए, कभी ये ब्रांच में कोई डिस्टर्बेंस हो गई है, कभी उस ब्रांच में हो गई है, ज़रा ज़रा सी बात को लेकर भूल गए हैं वो कुर्बानियाँ, भूल गए हैं वो बलिदान किस लिए दिए गए थे, जिन्होंने इतना कुछ जरा, हम छोटी सी किसी की बात नहीं जर सकते हैं, एक बोलने के लिए समय नहीं दिया तो मैं जा रहा हूँ मिशन से, मुझे बोलने के लिए वक्त नहीं दिया जाता, बस इतनी ही है हमारी औकात, या हमारी इतनी ही बीच में वो एक मिशनरी स्पिरिट है। ये विचारने लायक बात है, ये अवश्य इंटरनेशनली चाहे हिंदुस्तान की हर ब्रांच हर तरफ या विश्व के किसी मुल्क में ये अवश्य ध्यान देने लायक बात है कि हमने मजबूती देनी है मिशन को या हमने इसको कमज़ोर करना है। और इसलिए अगर गुरमत होगी साथ, अगर गुरु का भय और ज्ञान साथ होगा, इसका एहसास होगा केवल नाम के ही हम मिशन वाले या नाम के ही हम संत या भक्त नहीं होंगे, तो फिर निश्चय ही ये मिशन को और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। जो सपना बाबा गुरबचन सिंह जी का, जो बाबा अवतार सिंह जी का था, वो अवश्य पूरा होगा अगर इस प्रकार से हम अपने आप को इस रूप में ढालेंगे और हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और तमाम उन दौर में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेकर आज तक हम देख ही रहे हैं कि राजमाता जी का योगदान, कितने तप त्याग जो उस वक़्त शहनशाह जी ने किए या बाबा गुरबचन सिंह जी का वो तप त्याग वाला दौर, तो राजमाता जी ने कदम से कदम मिलाया और पूरी तरह से एक उसी दौर में से गुज़रते हुए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए रखा। और फिर 1980 से ले कर आज तक राजमाता जी ने एक एक पल मिशन को निछावर किया हुआ, किस तरह से चाहे सेहत कैसी भी रही, अभी भी आप जानते हैं कि सेहत पूरी तरह से साथ नहीं दे रही, लेकिन इन तमाम दौर में कितने कितने ऐसे समय आए जब बिल्कुल ही शरीर ऐसे ही निढाल सा भी हो गया, लेकिन फिर भी दास को याद है कहीं अब्रॉड या दूर देशों की यात्रा में एक रात पहले फ़ोन पे बात होती तो माता जी ठीक नहीं हैं, बहुत बीमार हैं, और अगले ही सुबह दोपहर को जब फ़ोन पे बात होती हालचाल पूछने के लिए तो कहते माता जी तो वहाँ संगत पे गए हैं। दास ने कहा कोई यहीं दिल्ली में ही किसी पास, कहते नहीं वो जो 100-150 किलोमीटर दूर जगह है वहाँ पर गए हुए हैं। तो ये एक आध नहीं बात, ये तो लगातार इस प्रकार से ये योगदान देते आ रहे हैं और गुरमत का अपने जीवन के द्वारा ये पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से ये तंदुरुस्त रहें और साध संगत को इसी तरह से एक आशीष देते रहें और ये मार्ग निर्देश जो देते आ रहे हैं, जो गुरमत वाला पाठ पढ़ाते आ रहे हैं, सारे ही मनमति को तज के गुरमत के रास्ते पे चलते चले जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना है साध संगत जी धन का।